الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے متعلق ہماری رہنمائی کی، اور اس میں جو خصوصیت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون معاشرت میں ہماری رہنمائی کی، یعنی کہ باقی جو دین ہیں، باقی جو ادیان ہیں، ان میں جو تصور ہے وہ یہ کہ بس عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو پوجا جائے، اللہ تعالیٰ کو کی یعنی کہ ایک عبادت گاہ ہو اور وہاں جا کے اس کی عبادت کر لی جائے تو یہی کافی ہے، باقی زندگی میں جو چاہے انسان کرتا پھرے، تو یہ تصور باقی ادیان میں رہ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام دیا اس کے اندر ہر پہلو کی گائیڈنس موجود ہے، حتیٰ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نماز کے اندر کیا بولنا ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ نماز کے باہر کیا بولنا ہے. اور یہ دین اسلام کو یونیک کرتی ہے، یعنی کہ اس نے دین کو مسجد سے نکال کے، عبادت گاہوں سے نکال کے پورے معاشرے کے اندر پھیلایا، اور صرف چند منٹ کے لیے عبادت کرنے کو دین نہیں قرار دیا بلکہ پورے 24 گھنٹے کی زندگی کو دین قرار دے دیا. تو اس لیے ہر پہلو کا سیکھنا پھر ضروری ہو گیا، لازمی ہو گیا کہ جب پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہی دین ہے تو ہر پہلو کا سیکھنا ضروری ہے. جیسے کوئی کہے کہ نماز سیکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں، حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں، تو اسی طرح دین کا ہر پہلو کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج میں کیا کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر کیا کرنا ہے، بازار میں کیا کرنا ہے، سوچنا کیا ہے، بولنا کیا ہے، سننا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی سلسلے میں یہ ترتیب ہے کہ ایک ہفتے درس قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہفتے کوئی آداب معاشرہ ذکر ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کچھ آداب ذکر ہوتے ہیں. تو پچھلی باری سے جو آداب چل رہے ہیں وہ بولنے کے آداب ہیں. تو چند آداب ہم نے دیکھے تھے، آج اسے سلسلہ آگے بڑھانا ہے. تو جو چند آداب ذکر کیے تھے اس میں سے امپورٹنٹ جو تھے وہ یہ کہ جب بھی انسان بات کرے تو کلیئر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو آج زائد ذکر بھی کی کہ قولوا قولا سدیدا، کہ بات سیدھی کہا کرو. تو بات کے اندر کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ بات بالکل صاف ستھری سیدھی ہو، کہ جو اگلے کو سمجھ آ جائے، میسج کمیونیکیٹ ہو جائے اس کے لیول کے مطابق. کیونکہ جب کسی کوئی شخص پڑھا لکھا ہے آگے تو اس کے مطابق بات کی جائے گی، کوئی ان پڑھ ہے تو اس کے مطابق بات کی جائے گی، کوئی بڑا ہے تو اس کے مطابق بات کی جائے گی، چھوٹا ہے تو اس کے مطابق بات کی جائے گی. اب چھوٹوں سے بڑوں کے انداز میں اگر بات کرنا شروع کر دی جائے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی بات کی. تو یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کے لیول کے مطابق بات کیجیے، کیونکہ بات کرنے کا مقصد، الفاظ کو یوز کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ میسج کمیونیکیٹ ہو. تو اگر انسان الفاظ بولتا رہے، میسج اگلے کو کمیونیکیٹ ہی نہ ہو یا اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کلیئرٹی میں ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ میسج بالکل کلیئر ہونا چاہیے. مطلب کیا، اس کی کچھ مثالیں دی تھیں کہ اگر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے کسی سے اجازت چاہتا ہے کہ میں 5 منٹ بعد آتا ہوں، تو وہ تقریباً 5 منٹ ہی ہوں، ये ना हो कि आधा घंटा और घंटा जहन के अंदर हो के इतना टाइम कहीं पर लग जाएगा और अगले कहनी में 5 मिनट में आता हूँ। जिस तरह आदत होती है इंसान की, माशरे में रिवाज आम है कि ऐसे आम कह दिया जाता है कि 5-10 मिनट में आता हूँ, अगला इंसान इंतज़ार में बैठ जाता है, प्लान कर लेता है उस मुताबिक, और अगला शख्स आधे घंटे बाद घंटे बाद वापस आता है, तो उसको हर्ज होता है, उसके काम में हर्ज होता है। तो इसी तरह कोई अगर टाइम पे किसी को दावत दे कि इतने बजे आओ, तो कोशिश करें तकरीबन उतने बजे ही हो, ऐसा ना हो कि इसमें घंटे का डिले हो, घंटा आगे पीछे हो, इससे भी टाइम वेस्टेज होता है। फिर अगर यानी ये दोनों तरफ से मेज़बान भी टाइम का ख्याल करें और मेहमान भी टाइम का ख्याल करें, क्योंकि ये अल्फाज दिए जा रहे हैं, अल्फाज की कोई अहमियत होती है कि जितने बजे कहा है तो उसका ख्याल करें। अब 5 to 10 मिनट्स का आगे पीछे होना, चलें ये मार्जिन ऑफ एरर है, मल्टीपल रीजंस की वजह से हो जाता है, कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे ऑनलाइन हम टॉक्स करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट एक टाइम दिया होता है, तो क्योंकि ऑनलाइन नेट कनेक्शन में और दूसरी चीज़ों में कई बार एरर्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स के अंदर एरर्स आ गए, तो ये ह्यूमन एरर्स हैं, यानी कि ये ऐसे एरर हैं जो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक होती आदत कि हर चीज़ को टाइम से डिले करना, हर चीज़ को उसको मतलब कि टाइम पे इसका ख्याल ना करना, अल्फाज देकर उसका ख्याल ना करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मुसलमान की रविश नहीं है, उसकी आदत नहीं है। वो अगर कोई बात कहता है तो अक्सर वो ठीक होती है, हाँ कभी आगे पीछे किसी गलती की वजह से हो जाए तो और बात है। तो और एक बात ये की थी कि बात की क्लैरिटी में ये भी शामिल है कि जब कोई मैसेज दे तो ये समझे कि अगला बंदा उसको समझ रहा है। जैसे मिसाल दी थी कि अगर कोई किसी जगह का रास्ता पूछता है तो फिर पूरा क्लियरली उसका रास्ता समझाए, जितना उसके इंफॉर्मेशन है, मतलब ये कि इतने अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर पे ये होगा, 200 मीटर पे ये होगा, आधे किलोमीटर पे ये होगा, 1 किलोमीटर पे ये होगा, ये कह देना बस करीब है और बस दूर है और बस दाएं जाएं और बाएं जाएं, यानी कि जिससे वो आपको समझेगा कि सही कह रहा है और वो वैसा करने की कोशिश करेगा और वो परेशान होगा। तो मुसलमान को परेशान करना, उसको यानी कि मिसगाइड करना, ये गुनाह है बताते खुद। तो इस तरह मैसेज की क्लैरिटी में ये भी था कि कई बार इंसान जुमले बोलता है तो क्लियर नहीं होते, कि जल्दी में तेजी में बहुत बोल रहा होता है कि उसने उससे कहा, अब सुनने वाले कुछ समझ नहीं आ रही होती किसने किससे कहा, लेकिन वो बोलता जा रहा होता है कि उसने उससे कहा, उसने आगे से ये जवाब दे दिया, उसने फिर ये कर दिया, उसने फिर ये पूछा, तो कई बार पूछना पड़ता है ये किसकी बात हो रही है, किसने किसको कहा, किसने क्या पूछा। तो जो अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला होता है वो क्लियर कम्युनिकेट करता है। फिर इसी तरह इस बात में ये भी शामिल है कि अगर कोई मशवरा मांगे तो उसको सही मशवरा दे, मतलब क्या कि बिल्कुल जितना इंफॉर्मेशन इसको है उसको आगे कम्युनिकेट करे, उसको उस मशवरे को अमानत समझे, कि अल्लाह ताला जिस तरह अमानत पे पूछेगा, कोई शक कोई चीज रखवाता है, अगर उसको केयरलेसली रखा तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि उसकी चीज तुम्हारे पास वक्ती तौर पर थी, क्यों उसको केयरलेसली रखा। तो इसी तरह मशवरा भी एक अमानत होता है, अगर कोई पूछता है कि मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं, तो अब जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको अगले को सही तरह से कम्युनिकेट करना, एक तो पूरा कम्युनिकेट करना और एक सही तरीके से कम्युनिकेट करना, जो जिसका जिक्र हम कर चुके हैं कि अल्फाज की सिलेक्शन भी बेहतर होनी चाहिए, और पूरी कम्युनिकेशन यानी कि जितना उसे पता है वो बता दे। फॉर एग्जाम्पल उसे नहीं पता तो ये भी बता दे मुझे नहीं पता, ऐसा ना हो कि वो शर्माता रहे, शर्म महसूस करे कि अगर मैंने कह दिया कि नहीं मुझे पता तो ये बुरा मानेगा कि इसको ये बात ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है कोई, तो पेशेंट उसके पास आया उसे मशवरा लेने, तो हो सकता है उसकी फील्ड ना हो, तो वो कह दे कि मेरी ये फील्ड नहीं है, मुझे इसके बारे में 100% लेटेस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ना कहे कि अपनी उस शर्म की वजह से कि ये शख्स मेरे मोहल्ले का है, मेरे खानदान का, ये क्या कहेगा, ये कैसा डॉक्टर है, इसको ये नहीं पता। हालांकि ये अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, अब हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज का स्पेशलिस्ट दूसरी चीज के बारे में बहुत कम जानता होता है, क्योंकि उसने उसी में जिंदगी अपनी वक्त कर दी होती, लेकिन आम बंदे को इस चीज का एहसास नहीं, वो समझता है ये डॉक्टर, इसको हर चीज पता होगी, वो उसे पूछता है, अब वो शर्म की वजह से कह देता है कि यानी कि अपनी तरफ से कहता है ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हालांकि उसे पता होता है मुझे अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं है इस वक्त। उस वक्त बेहतर होता है कि क्लियरली बता दे कि मुझे नहीं इसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, या मैं पता कर देता हूँ या किसी की तरफ गाइड कर दे कि वो इसका स्पेशलिस्ट आप उससे पूछ लो। लेकिन ये चीज़ गलत है कि उसको कह दे कि ये करे और बाद में उसमें नुकसान हो, और बाद में होता भी है कई बार लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उस वक्त ये डिसीजन ले लेता, मेरी जिंदगी इफेक्ट हो गई इसकी वजह से। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही तौर पर अगले को गाइड करें। जिसने कहा कि रास्ता पूछना वो भी मशवरा है, इसी तरह जिंदगी का कोई अगर रास्ता पूछ रहा है वो भी मशवरा है, अगर कोई अपनी सेहत के मुताबिक कोई गाइडलाइन पूछ रहा है वो भी मशवरा है, कोई आलम दीन है उससे कोई मसला पूछ रहा है वो भी उसके बाद अमानत है, उसको बताना है पूरा, और वो भी शर्म ना महसूस कर रहे नहीं पता, क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती, और कई बार पता भी होती है तो भूल जाती है, अगर उसको रिफ्रेश ना किया जाए तो कई बार भूल जाती है, डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि ये था या ये था, यानी आंसर इसका ये था या ये था, तो कतन शर्म महसूस ना करे, कह दे कि मुझे इसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है या मैं भूल गया हूँ, तो मैं रिफ्रेश करके बता दूंगा, मैं किताबों में कंसल्ट करके बता दूंगा, मैं किसी से पूछ के बता दूंगा। लेकिन इस चीज़ की अहमियत जहन में रहे कि अगले को सही गाइड करना ये बहुत अहम है, इससे ये कोई कम बात नहीं है कि इंसान को एक मुंह से जुमला निकाल दे और वो अगला शख्स उस पर डिसीजन ले ले और फिर उसे नुकसान हो जाए, और फिर आपके पास आए कि आपने तो ये कहा, तो कहे कि अच्छा मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मुझे तो याद ही नहीं ऐसे कह दिया, तो ये एक मोमेंट की शान नहीं है, बल्कि एक एक वर्ड उसका बहुत अहम होता है। इसकी बस यानी इससे अंदाजा लगा लें कि मुसलमानों का पूरे दीन का सोर्स क्या है, कुरान और हदीस। बेसिकली कुरान और हदीस के एक एक वर्ड पे हमारे दीन का इन्हिसार है, कि अगर यहां अल्लाह ताला ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांड की, अमर का सेगा दे दिया, अमर के सेगे में बात की, अब इसका हुक्म कुछ और है, अगर अमर का सेगा नहीं है उसका हुक्म कुछ और है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि वर्ड्स को चूज करना कितना अहम है। यानी कि अगर एक जगह कहा कि ये करो तो वहां उलमा ने उससे मतलब निकाला कि अब जरूरी है, जहां कहा कि ये कर सकते हो वहां उन्होंने कहा कि ये एक ऑप्शन चीज है, मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूं समझाने के लिए। लेकिन इससे अंदाजा ये होता है कि वर्ड्स की सिलेक्शन क्या अहम चीज है, कि हमारी बेसिस ही इस पे है कि वर्ड्स को उसकी उस पे कि वर्ड्स क्या हैं, और फिक के मसाइल जितने अखज किए जाते हैं वो इसी बहस पे होते हैं कि वहां ये वर्ड्स हैं वहां ये वर्ड्स हैं, तो ये मसला इस तरह होना चाहिए, ये मसला इस तरह होना चाहिए, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस इसकी अहमियत खुद ही वाजे हो जाती है अगर इंसान दीन का इल्म हासिल करे। दीन का इल्म हासिल करता है फिर ये बातें पता चलती हैं, इन चीजों की अहमियत है। मैं जो सारा दिन एक मतलब के बोलता रहता हूं बगैर सोचे समझे, तो ये एक मोमेंट का शान नहीं होती, उसके एक एक वर्ड्स पे रिजल्ट्स निकल रहे होते हैं, वादा करना वो उस पे पूछ होगी वर्ड्स ही हैं, कोई कोई कमिटमेंट करना उस पे पूछ होगी वो वर्ड्स ही हैं। अब इंसान के मैंने तो ऐसे ही कह दिया, तो ये ऐसे ही कहना कुछ नहीं होता, क्यों एक आकिल बालिग शख्स एक बात कह रहा है तो उसकी कोई वैल्यू है, वो ऐसे कैसे कह सकता है। जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजन इस पे ही होते हैं, निकाह का तलाक का, तो इसलिए कहने का मकसद ये है, और अदालती मामला सारे वर्ड्स पे चल रहे होते हैं कि अगर वर्ड ये है तो इस ये डिसीजन है, अगर वर्ड ये है तो ये डिसीजन, तो कहने का मतलब ये कि जितना कुछ हम बोलें सोच समझ के बोलें और अपनी आदत बनाएं सोच बोलने से पहले सोचें, और वर्ड्स को बेहतरीन सिलेक्ट करें, अगले को बेहतरीन गाइड करें, फिर एक और चीज जहन में रहे कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान यानी कि कोई शख्स किसी से कुछ चीजें शेयर करता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और इंटरलिंक्ड हैं, मतलब ये कि हम दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, एक आम शख्स यानी हर एक की स्पेशलिटी है, अब हर दूसरा दूसरे हर स्पेशलिटी वाला दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक आम शख्स है वो बीमार होता है, वो डॉक्टर पर डिपेंडेंट है, डॉक्टर को कोई इशू है फाइनेंसी का, वो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट पर डिपेंडेंट है, कुछ मकान बनाना है इंजीनियर पर डिपेंडेंट है, नक्शा बनवाने के लिए मजदूरों पर डिपेंडेंट है मकान बनवाने के लिए। तो ये इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है। अब इसमें कई बार दूसरों से शेयर करनी पड़ती है बात, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो किसी को नहीं बताने वाली होती, पर्सनल बात होती है लेकिन शेयर करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, खास तौर पे डॉक्टर्स के साथ ये मामला आम होता है, वकीलों के साथ ये मामला आम होता है, और उलमा और मशायख जो दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं उनके साथ ये मामला आम होता है, कि जिंदगी के अपनी कई बातें उनके सामने खोलनी पड़ती हैं। पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, आता है उसे बात बतानी पड़ती है। तो उसको वहां पे बात बतानी पड़ती है। इसी तरह वकील जो है जो अदालत में है उसको लोग जाके पूरी बात बताते हैं, इसी तरह उलमा के पास जाके अपने मसले बताते हैं मसला पूछने के लिए, मशाइख के पास जाते हैं गाइडेंस लेने के लिए कि मैं इसने ये बात की बीमारी है इसका क्या इलाज है, ये बात की बीमारी है इसका क्या इलाज है। तो बाकी फील्ड्स में भी होता है लेकिन इन फील्ड्स में ज्यादा होता है कि राज की बातें सीक्रेट्स अपनी जिंदगी के इंसान खोलता है। अब ये जहन में रहे कि ये सारा अमानत होता है, अल मजालिसु बिल इमानती, कि जो मजलिसें होती है अमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मतलब यही कि अगर इंसान प्राइवेसी में कोई बात कर रहा है वो अमानत है। अब अल्लाह ताला वैसे ही उससे पूछेंगे जिस तरह किसी अमानत के बारे में सवाल हो। तो अब अगर उसने इस अमानत में खयानत की तो ये अल्लाह के यहां पकड़ा जाएगा। मतलब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इतना क्लियरली इसको जिक्र किया, कहा कि अगर कोई शख्स आए बात करने लगे और वो सिर्फ कुछ ना कहे कि ये राज की बात है, वो सिर्फ दाएं बाएं देखे कि कोई है तो नहीं यहां पे, कोई करीब तो नहीं बैठा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसका ये जेस्चर ही इस चीज को शो कर रहा है कि ये सीक्रेट है, अब ये अगले वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो ये इस चीज को भी सीखना चाहिए कि मैं कैसे अब दूसरों के सीक्रेट्स को सीक्रेट सकूं, कि मेरी आदत ना हो कि दूसरों की बातें डिस्क्लोज करने की। और क्योंकि इस चीज का, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी जुबान के इस्तेमाल में बहुत मोहतात नहीं है, तो इसलिए फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है सोसाइटी के अंदर। यानी कि इंसान बात करते ही डरता है, अपने अपने दिल की बात करते डरता है, अपने राज की बात करते डरता है, गाइडेंस लेते ही डरता है, इवन उलमा और मशाइख से गाइडेंस लेते डरता है कि बात डिस्क्लोज ना हो जाए। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो दीन को सही तरह पढ़ चुका है वो इस चीज की उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि इसकी बहुत अहमियत है, तो वो आमतौर पर राज को राज रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते। यानी कि सारी दुनिया, अब लोगों को नहीं पता होता सारी दुनिया अपने क्या क्या राज उनको बता रही होती है, जिंदगी की क्या क्या बातें उनको बता रही होती है, बजाहिर देखने में भोले भाले लग रहे होते हैं कि इन्हें क्या पता दुनिया के बारे में, हालांकि सारी दुनिया की ऐसी ऐसी बातें उन्हें पता होती हैं, अगर वो डिस्क्लोज कर दें या लोगों को पता चल जाए तो दुनिया हैरान रह जाए कि इस मुआशरे का क्या हाल। लेकिन वो उसको राज रखते हुए लोगों को गाइड कर रहे होते हैं और देखने में वो भोले भाले लगते हैं। तो यही एक मोमिन की सिफत होती है, उसके अंदर दुनिया भर के राज होते हैं वो, लेकिन कभी वो अफशा नहीं करता, कभी डिस्क्लोज नहीं करता, वो सीक्रेट को सीक्रेट रखता है, बेशक उसको मौत का सामना करना पड़े। कोई ऐसे कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा सीक्रेट डिस्क्लोज करो, वो कहेगा नहीं, दूसरे का सीक्रेट अमानत है वो डिस्क्लोज नहीं होगा, बेशक मैं जान दे दूं, ऐसी उसकी कैफियत होती है। तो दूसरों की बातों को अपने पास सेव रखने की भी आदत डालनी चाहिए। अगर कोई बात आपसे कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे नहीं बताई जाएगी, तो उसको ये इतना इत्माद का होना चाहिए दूसरे का कि वो बात फिर कभी ना लीक आउट हो। लेकिन होता क्या है माशरे के अंदर अक्सर, के इंसान लीक आउट कर देता है, उसे वो उसकी तरबियत ही नहीं अपनी वो कर सकता कि मैं किसी की बात को राज रखूं, किसी की बात को अपने अंदर रखूं। और उससे फिर माशरे के अंदर एक बेतमादी पैदा हो जाती है, लोग बात करने से डरते हैं, फिर हत्ता के सारी जिंदगी बड़े बड़े मसलों को अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं, और इवन जो जो मालिज होते हैं उनके पास भी नहीं जाते। वजह वही कि ट्रस्ट खत्म हो चुका। लेकिन एक डॉक्टर तो शायद ऐसा ट्रेंड ना हो, क्योंकि अगर डॉक्टर से प्राइवेटली बात कर ले वो दीन पे ना हो, गो के उनके एथिक्स में लिखा होता है कि तू प्राइवेसी यानी सीक्रेट को सीक्रेट रखना है पेशेंट, लेकिन कई बार वो उनकी उन एथिक्स खाए तो जाते हैं लेकिन दीन की ना होने की वजह से उनको उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता, तो वो कई बार आपस में प्राइवेट मजालिस में जिक्र भी कर देते हैं। लेकिन जो दीन पे है और सही तौर पे दीन पे है वो इस चीज का बहुत ख्याल करते हैं, वो इस चीज की यानी कोई अहमियत देते हैं कि मैंने कुछ स्पेशली करना है कि मैं अपनी बात यानी दूसरों की बात किसी को ना बताऊं, और यहां तक उसकी हिफाजत करते हैं कि इवन कई बार वो मजलिस में शख्स बैठा होता है, सामने बैठा होता है, तो बात अगर करनी भी होती है इस अंदाज में कि किसी को पता नहीं चलता किसके मुतालिक बात हो रही हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि कई बार आते थे लोग मसले लेके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर पिन पॉइंट किए जनरल खिताब में ही कह देते थे कि लोगों को क्या हो गया कि लोग ऐसे करते हैं, मतलब ये कि सबको मैसेज भी चला जाए, उसका मसला भी हल हो जाए, वो समझ आता है उस मजलिस के अंदर कि मुझे कहा जा रहा है। लेकिन ये भी तो होता है कई बार कि कई लोगों के साथ वही इशू होता है, वही मसला होता है, इसलिए जनरली बात कर दी जाती है। लेकिन इस चीज में भी ये मोहतात होना चाहिए कि कोई ऐसी इंडिकेशन ना दे कि जिससे अगला पिन पॉइंट कर सके किसी न किसी अंदाज में कि ये वो शख्स है। मिसाल के तौर पे कोई किसी को सीक्रेट बताए या कोई बात बताए, मसला बताए, अब उस जनरल खिताब में भी ऐसे वर्ड यूज किए जा सकते हैं कि लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कौन शख्स है, क्योंकि मिसाल के तौर पे कि एक डॉक्टर है वो ये करता है, एक इंजीनियर है वो ये करता है, अब मजलिस में लोग सोचेंगे कौन है सर, हो सकते हैं वहां दो चार ही डॉक्टर हो, तो पिन पॉइंट गो के डायरेक्टली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली तो लोगों को एक दावत दे दे कि वो अब उनके पास डिफरेंशियल बहुत कम है, उनके पास ऑप्शन बहुत कम है कि यही तीन चार लोग होंगे शायद इनमें से कोई हो, और अगर उन्हीं में से कोई हुआ तो वो तो गिल्ट फील करेगा कि ये क्यों मुझे ऐसे बात कर दी। तो इतना मोहतात होके बोले कि ये भी ना कभी शो करे, ये भी ना कभी शो करे कि कोई गैस भी कर सके, कोई अंदाजा भी लगा सके कि किस शख्स के मुतालिक बात हो रही है या क्या बात हो रही है। तो ये भी बोलने के आदाब में है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में बहुत मोहतात होते थे। इसी तरह अब ये सारा यानी कि डॉक्टर से मशवरा या आलिम से मशवरा या शेख से मशवरा जिससे भी मशवरा हो रहा है, अब वो किस जगह मशवरा ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी को कहे कि यहां मुझसे बात करें, और ये उस शख्स को पता है ये उस शख्स को पता है कि ये जो जगह है यहां पे प्राइवेसी नहीं है, मतलब क्या कि लोग बैठे हुए हैं और वो ईयर शॉट पे बैठे हुए हैं, यानी कि उनको आवाज जा रही है या जा सकती है या वो अंदाजा लिप्स रीडिंग कर सकते, तो ये भी प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी तो वो होगी कि जहां पे कोई भी अंदाजा ना लगा सके कि क्या बात हो रही है। इस चीज की अहमियत होनी चाहिए दूसरे की प्राइवेसी रखने की, दूसरे की बात को राज रखने की अहमियत होनी चाहिए, ये ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए मुआशरे के अंदर। अगर ये ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो फिर मुआशरे के अंदर एक बेचैनी क्रिएट होगी, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता कि जरूरत ना पड़े किसी को, किसी आलिम की, किसी शेख की, किसी डॉक्टर की। लेकिन अगर ये चीजों का ख्याल नहीं किया जाएगा तो बेतमादी बैठेगी और लोग बड़े बड़े मसले लेके बैठे रहेंगे जो कि ट्रीटेबल होंगे। क्योंकि एक बार किसी ने ये क्वेश्चन भी किया कि लोग यानी कि अगर उसने बता भी दे दिया जाए कि कोई बातनी अमराज है, ये होते हैं गुस्सा वगैरह, और इनके ट्रीटमेंट भी मौजूद है, यानी जिक्रुल्लाह की कसरत अगर अंडर गाइडेंस की जाए तो इसका इस्लाह भी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग रजू क्यों नहीं करते, किसी ने पूछा। तो उसकी तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि ये कोई बातनी अमराज है, पहली चीज़ उसकी कोई इसका कुछ करना भी चाहिए। दूसरे ये नहीं पता, अगर ये पता हो कि कोई मसला है मेरे साथ, ये नहीं पता होता कि इसका इलाज मौजूद है, यानी कि ये ट्रीटेबल चीज़ें होती हैं, जिस तरह फिजिकली एलिमेंट्स होती हैं, बीमारियां होती हैं और ट्रीट की जा सकती हैं, इसी तरह बातनी भी बीमारियां इंसान को होती हैं और वो भी ट्रीटेबल होती हैं, गुस्सा, शावत, तकब्बुर, हिर्स वगैरह, ये सारी बीमारियां और सब ट्रीटेबल है। मतलब कि किसी को है, फील होता है हिर्स कि वो रह ही नहीं सकता, कहीं वो खाने का हिर्स होता है, कहीं उनका माल का इतना हिस्सा होता है, वो बेचैनी फील करते हैं माल के मुतालिक, वो फील करते हैं हर वक्त मेरे दिन में माल की सोच है, माल छीनता है उनको एक मुसीबत फील होती है। या इसी तरह किसी के अंदर, औरतों के अंदर कई बार कपड़ों की हिस्स होती है, मर्द के अंदर भी हो सकती है लेकिन औरतों के अंदर ये इश्यू ज्यादा होता है। तो ये सारे यानी कि हिर्स क्या मर्ज मौजूद भी है और उसका इलाज भी मौजूद। तो हिर्स का मर्ज भी मौजूद होता है और उसका इलाज भी मौजूद है। तो दूसरी चीज, पहली चीज रियलाइज करना कि मर्ज है, दूसरी चीज ये रियलाइज करना उसका इलाज भी है, और तीसरी चीज ये है कि ट्रस्टवर्दी को बंदा मिले कि जिससे बात की जाए। अब वो ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं मिलता, मतलब ये ट्रस्ट डेवलप ही नहीं होता कि पता नहीं ये शख्स इस काबिल है भी कि इसको बात बता दी जाए, इंसान डरता ही रहता है। वो डर क्यों है? क्योंकि मुआशरे के अंदर उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंसेस किए हैं कि लोग राज को राज नहीं रखते। जब ये ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर उसका बहाल होना मुश्किल है, फिर उसको एक वो हर वक्त सिलेक्टिव यानी सिलेक्शन में इतना टाइम लगा देता है, सोचने में इतना टाइम लगा देता है कि इस शख्स को कोई बात बताई भी जाए कि ना बताई जाए। तो ये तीन, जब ये तीन बातें पूरी हो जाए, यानी कि रियलाइजेशन हो जाए कि मसला है, ये रियलाइजेशन हो जाए इसका इलाज है, और ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये बंदा ट्रस्टवर्थी है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, फिर इंसान ये फील करता है, यानी ये कंफर्टेबल फीलिंग होती है कि अपना इलाज करवा ले। लेकिन इस चीज में देर लग जाती है, इस सिलेक्शन में देर लग जाती है और टाइम वेस्ट हो रहा होता। तो टाइम इंसान का वेस्ट हो जाता है बहुत सारा, उसकी रीजन क्या है कि मुआशरे के अंदर जुबान का सही यूज ना होना, इस चीज की अहमियत ना होना कि दूसरों के राज को सीक्रेट रखा है। अगर हम नोट करेंगे हम कितनी जल्दी सीक्रेट लीक करते हैं, क्योंकि सीक्रेट हम समझते हैं बहुत बड़ी बात, हालांकि छोटी बातें भी सीक्रेट होती है। कोई कहे कि मेरे घर में ये मसला हो गया, अब ये उसका सीक्रेट है, ये उसका सीक्रेट है, क्यों उसको लीक आउट कर रहा? कई बार इंसान बीवी शौहर से लीक आउट कर देती है, शौहर बीवी से बता देता है कि फलां ने मुझे ये कहा। ठीक है, नॉर्मल बात कोई बता दे और बात है, लेकिन अगर उसे पता है कि बहुत अहम मैटर है, अगर उसे पता है और खास तौर पर उसने मेंशन कर दिया अगले ने अपने जेस्चर से या अपनी बात से कि इसको सीक्रेट रखना है, तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई बताए। शौहर बीवी को भी नहीं बता सकता, बीवी शौहर को भी नहीं बता सकती, दूसरों को बताना तो दूर की बात। जुबान के इस्तेमाल में मोहतात होना ये एक बहुत बड़ा अहम उसूल है एक मुआशरे का, और उतना ही किसमें कैजुअल हुआ जाता है। इसी तरह बात जो बताई जाए उसकी तहकीक कर ली जाए, बगैर तहकीक के कभी कोई बात ना दूसरे को बताई जाए, बगैर तहकीक के अगले को बात ना बताई जाए। मतलब क्या कि अगर कोई बात पता चली है तो उसको रिकन्फर्म जरूर कर ले, क्योंकि अब जब उसकी जुबान से निकलेगी ये बात तो उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी कि इसने मुझे कहा है, ये वो ये कहता है। और जितना इंसान का लेवल ऊंचा है उतना उसे मोहतात होना पड़ेगा इस बारे में। मतलब ये कि अगर आम बंदा कोई कोई बात ऐसी कर दे तो शायद उसका इतना इफेक्ट ना आए, लेकिन अगर कोई घर का मालिक यानी कि शौहर वो ऐसी बात कर दे उसका इफेक्ट ज्यादा है, कोई एक कंपनी का मालिक कर दे और ऐसे बगैर तहकीक के बात कर दे उसके इफेक्ट ज्यादा है, कोई अगर मुल्क का चलाने वाला अगर ऐसा कर देगा उसके इफेक्ट ज्यादा है, कोई आलमे दीन ऐसे बात करेगा उसके इफेक्ट ज्यादा है। तो इसलिए बात करने में ये भी इंसान को मोहतात होना पड़ता है कि जो मैं बात कर रहा हूं कितनी ऑथेंटिक है। तो इसलिए अगर उसे डाउट है कि ऑथेंटिक बात नहीं है या इसमें, तो फिर या तो मेंशन ना करे या उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी मेंशन कर दे, मतलब ये कि कह दे कि ये बात इस तरह है लेकिन इसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो 50% है, अगर बतानी जरूरी हो, यानी कि ये 100% क्रेडिबल बात नहीं है, इस पर पूरा इत्मीनान नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसको रिकन्फर्म कर ले। तो इस तरह से फिर भी गुंजाइश है अगर कोई बात करनी जरूरी हो, लेकिन बेहतर ये है कि बात करने से पहले ही उसको कन्फर्म किया जाए। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बीमार हो गया, दूसरे मुल्क रहता है, कोई शख्स बीमार होने की खबर मिली कि वो शख्स बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट है। अब ये खबर किसी ने दे दी, अगर तो क्रेडिबल बंदा है तो ठीक है उसकी बात पे बात किया जाएगा, लेकिन अगर वैसे ही र्यूमर कई बार उठ चल पड़ती है तो ऐसा ना हो कि उस र्यूमर के बेस पे उसके घर फोन कर दे उसके मुल्क में, पहले उसको 100% श्योर करे कि जो जो उसके पास सोर्सेज हैं, और श्योर करने के बाद उसके घर इत्तला दे। अब कई बार होता है कि र्यूमर्स होती हैं और इंसान सुनता है और उसको फौरन आगे पहुंचा देता है और उससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज के बारे में बहुत मोहतात होना चाहिए कि बोलते हुए बातमाहत बातें बोले, एक सही बात करे जिसकी उसके पास ऑथेंटिसिटी है। और ये भी जो दीन की ट्रेनिंग से गुजर चुका होता है उसको पता होता है, जिसने अब कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, वो देखते हैं कि वो बात करने से पहले उलमा कितने मोहतात होते हैं, वो मेंशन करने से पहले कि ये बात इस तरह है, ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस हसन है, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल ही हैं। अब उसको कैटेगराइज किया जा रहा है कि सही का मतलब कि ये इसमें श्योरिटी है, हसन का मतलब कि 100% श्योरिटी नहीं है, ज़ईफ़ का मतलब है कि उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, तो उसे मेंशन कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को और आगे नेक्स्ट सेटिंग में बढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक है ही इतना अहम कि इस पे कई सिटिंग्स चाहिए ट्रेन होने के लिए इंसान को। मैं पता तो हो, ट्रेनिंग तो बात की बात है, कभी इंफॉर्मेशन तो पता चले, नॉलेज तो पता चले कि इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि फील होता है कि माशरे के अंदर बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं है, खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर कई बार फील होता है कि इस चीज को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती कि अपने वर्ड्स को। तो इस चीज की अहमियत है, दीन ने इसको हाईलाइट किया है, और कुरान पाक की कितनी आयात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अकवाल इस मुतल्लिक हैं कि अपनी जुबान को सही यूज किया जाए। तो अल्लाह ताला हमें कामिल जिंदगी के अंदर कामिल दीन को लाने की तौफीक दे दे, हमें गाइड कर दे, और जो जो रुकावटें हैं, हमारी हैबिट्स खराब हैं, हमारी जो आदत बिगड़ी हुई हैं उनको सही कर दे। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर मराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, जो कुछ दुनिया में उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। मराकबा कल्बी जिक्र को कहते हैं, ये सोचें कि अल्लाह की रहमत आ रही है कल पे और मेरा कल अल्लाह 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 कर रहा है। मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। ये सोचेंगे अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में, समा रही है मेरे दिल, अल्लाह 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 कह रहे हैं। لا إله إلا الله محمد رسول الله الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں یا اللہ پاک آپ کی رحمت ہے یا اللہ پاک کہ آپ نے ہمیں دین اسلام سے منسلک کیا ہمیں ایمان نصیب کیا اسلام نصیب کیا یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ہمارے لیے اساتذہ کا انتظام کیا کہ یا اللہ پاک انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا آپ نے ایسے اولیاء کا ایسے اپنے بندوں کا انتخاب کیا تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے دین کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا یا اللہ پاک اب آپ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں زندگی کے ہر شعبے میں کامل طور پہ اس دین پہ آ جائیں یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے یہ چیز ہم پہ آسان کر دے یا اللہ پاک ہمیں کامل طور پہ کامل دین پہ لے آ یا اللہ پاک صبح سے شام تک یا اللہ پاک زندگی کے ہر شعبے میں ہماری زندگی کے دین کو زندہ کر دے یا اللہ پاک دین کی اہمیت ہمارے اوپر واضح کر دے یا اللہ پاک دین پہ نہ چلنے کے کیا نقصانات ہیں یا اللہ پاک وہ ہم پہ واضح کر دے یا اللہ پاک یہ جو طبیعت کے اندر غفلت ہے سستی ہے کاہلی ہے دین پہ آنے میں یا اللہ پاک تیری طرف بڑھنے میں اس کو محض اپنے کرم سے دور کر دے یا اللہ پاک یقیناً گناہ وجہ بنتے ہیں سستی اور کاہلی کی یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے یا اللہ پاک سستی کاہلی دور کر دے یا اللہ پاک ہمیں ہم جس طرح دنیا کے معاملے میں چست ہیں دنیا کے معاملے میں شارپ ہیں دنیا کے معاملے میں ہم کسی چیز کے معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اسی طرح یا اللہ پاک یہی مزاج ہمارا دین کے معاملے میں بنا دے ہر چیز میں یا اللہ پاک کامل معیار والی معیار پہ اترنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک آپ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں اس طرح آپ نے فرما دیا کہ یہ دنیا بنی اس لیے کہ ایوکم احسن عملا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے یا اللہ پاک ہمیں بعمل بھی بنا اور بہترین عمل کرنے والا بھی بنا دے یا اللہ پاک ہمیں اس کے لیے جو جو اسباب درکار ہیں بہترین عمل پہ آنے کے لیے وہ ہمیں مہیا کر دے علم ہمیں مہیا کر دے یا اللہ پاک تزکیہ ہمیں مہیا کر دے یا اللہ پاک اساتذہ ہمیں مہیا کر دے، یا اللہ پاک اچھی صحبتیں ہمیں مہیا کر دے، یا اللہ پاک اچھے لوگ ہمیں مہیا کر دے، موت تک یا اللہ پاک یہ ساری نعمتیں ہمیں مہیا رکھ، اور ہمیں دین پہ کامل طور پہ قائم رکھ، اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے، چھوٹے تھے یا بڑے تھے، یا اللہ پاک حقوق العباد کے تھے یا حقوق تیرے حق سے منسلک تھے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک سستی ہوئی، غفلت ہوئی، خواہش پہ چل پڑے، یا اللہ پاک جانتے بوجھتے کئی بار تیرے حکموں کو پامال کیا، یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا ہے لیکن خواہش کی وجہ سے تیرے حکم پامال کر دیے، یا اللہ پاک اب تیرے ہی دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ پاک معافی کے لیے، اللہ پاک تو رحم کرنے والی ذات ہے، معاف کر کے خوش ہوتی ہے، اور یا اللہ پاک ہم معاف ہو کے خوش ہو جائیں گے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال دے، اپنی رحمت سے ہمیں یا اللہ پاک گناہوں کی گندگی سے نکال دے، یا اللہ پاک ہمیں طاعت کی لذت اور طاعت کی یا اللہ پاک انوارات نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ہماری عادات کو بدل دے، یا اللہ پاک ہم ان گناہوں کی عادات سے تنگ آ گئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں نکال دے، یا اللہ پاک بال سفید ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان سیاہ دلوں کو منور کر دے۔ یا اللہ پاک یقیناً ان قریب ہم تیرے سے ملاقات کرنے والے ہیں، یا اللہ پاک جب تیرے پاس آئیں تو منور اور ایمان والا اور یا اللہ تیری یاد والا قلب منیب اور قلب سلیم لے کے تیرے پاس حاضر ہوں، یا اللہ پاک غافل دلوں کو لے کے اپنے پاس حاضری سے ہمیں محفوظ فرما دے، سیاہ دلوں کو لے کے اپنے پاس حاضری سے محفوظ فرما دے، یا اللہ پاک غافل دل لے کے تیرے پاس حاضری سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک اپنی محض اپنے لطف و کرم سے ان نعمتوں کی حقیقت بھی کھول، ان نعمتیں ہمیں نصیب بھی فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ غموں، مشکلوں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گھر بار کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا اللہ پاک جو نوجوان ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کے یا اللہ پاک مسائل و ایشوز ہیں، اپنی رحمت سے سب کو سلجھا دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو یا اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر و حشر کا معاملہ فرما کے بغیر عذاب اور بغیر بلا استحقاق جنت و فردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً یا اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو محض اپنے لطف فضل سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو یا اللہ پاک جنت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک محض اپنے لطف فضل سے بیٹھنا قبول کر کے ہماری زندگیوں کے اندر یا اللہ پاک آداب و اخلاق پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔